जिसने वो स्थान देख लिया यहां दिल नहीं लग सकता उस प्राणी का। अब वो अपनी वो देखी हुई ये तो काल का लोक है, ये तो ऐसा है, दो दिन का यहां जीवन है, इस तरह की अपनी उस बात को बहुत याद रखे हुए और जन जन को सुनाने की चेष्टा कर रहे हैं, किसी की सुन नहीं रहे और ये वाणी बोलते ही जा रहे हैं, बोलते ही जा रहे हैं, चुप ही नहीं हो रहे। तो गांव वालों ने सोचा भी लड़का तो लड़की का जीवित हो गया परंतु पागल हो गया था, ये पागल हो गया और वो दूध इसने जंतर मंतर का बाबा जी पिला गया, जिस कारण से लड़का पागल हो गया। उस लड़के गरीब दास जी को बावड़िया कहने लगे, पागल बौड़िया बावड़िया बोले। अब उनको बावड़िया कहने लगे, क्यों बावड़िया पागल बोलो, पागल है बांडे सारा दिन। तो इन्होंने सोचा भी कोई बात नहीं, पागल अवश्य हो गया बच्चा, पर लड़की इसके सहारे अपना जीवन व्यतीत कर लेगी, जो जीवित हो गया शुक्र मनाओ भगवान का। अब परमात्मा जब 13 वर्ष के हो गए, 3 वर्ष के बाद एक गोपाल दास नाम के दादू पंथ के एक संत बने हुए थे, बनिए के घर का जन्म था उस महापुरुष का। और वो दादू पंथ श्री दादू साहेब के अनुयायी थे, उस पंथ से उनको उपदेश था और वो संत वाणी के विषय में जानते थे। एक दिन उसने लाल कपड़े पहन रखे थे, साधु रूप बना रखा था, जैसा हम साधु मानते हैं, जो हमारी वो धारणा बना रखी है लोगों ने, गल में माला, लाल कपड़े, मुंड मुंडा रखा होकर, डैडी बुडा रखी, हम उसको संत मानते हैं। सादे कपड़ों में चाहे भगवान घूमता रहे, हम उसको महत्व नहीं देते। तो वो संत रूप में वहां किसी घर में आकर रुके किसी के, तो उस व्यक्ति ने जिक्र किया कि हमारे चौधरी साहब का दोता पागल कर दिया किसी संत ने, और संत की विद्या को संत ही काट सकते हैं, आपसे हम प्रार्थना करते हैं अगर आप कुछ रजा बख्शो तो उस लड़की के लड़के को आपको दिखा दें। तो गोपाल दास जी ने कहा कि बुला लाओ, कोई बात नहीं, हम अवश्य उसको देखेंगे। अब गरीबदास जी के नाना जी 5-7 और व्यक्ति मौजूद थे, बच्चे को लेकर संत के पास पहुंच गए। संत जी ने पूछा कि वो कौन मिला था आपको, वो कौन संत था बेटा, जैसे बात कर इसको पूछूं ये के बोल लगा, और किसने तेरे तरह ये हाल कर दिया, किसने पागल कर दिया, तू बेटा मुझे बता। तो क्या बताते हैं, आम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। क्या बताते हैं, जिन्होंने मुझे, हम सुल्तानी सुल्तान इब्राहिम अधम और दादू जी और नानक जी को जिन्होंने पार किया, वही मुझे आकर मिला। और वो कौन था, वो काशी में जो कबीर था जुलाहा। अब दादूपंथी 10-20% व्यक्ति ये कहते हैं कि उनको तो बूढ़ा बाबा मिला था, कबीर जुलाहा नहीं मिला था। किनको, दादू जी को। और ये कुदरती बात है, क्योंकि उन संतों उसमें कोई ऐसा लेखन कार्य था को ना, संतों ने अपने जो विचार व्यक्त किए वो पूरे नोट हो नहीं पाए, कुछ नोट हुए कुछ, तो उनका एक संग्रह करके बाद में उनकी यादगार बनाए रखने के लिए वाणियां संग्रह कर ली, ग्रंथ का रूप दे दिया गया। तो उसमें लिखा है, उसमें वाणी में दादू साहेब ने बहुत कुछ विवरण दिया है। तो वो क्या मानते हैं कि तो वैसे लिख दिया होगा, एक कबीर साहेब संत थे इसलिए उनके विषय में लिख दिया होगा, जबकि स्पष्ट लिखा है कि जिन मुझको निज नाम दिया, सोए सतगुर हमार, दादू दूसरा कोई नहीं, वो कबीर सृजनहार। अब क्या बताते हैं कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, काशी माहे कबीर हुआ। फिर आगे क्या बताते हैं, अलल पंख अनुरागे है सुन मंडल रथीर, दास गरीब उधारिया सतगुरु मिले कबीर। गैबी ख्याल भी साल सतगुरु अचल दिगंबर, थीर है भक्ति हेत काया दर आए अवगत सहत कबीर है। नानक दादू अगम अगादू तेरी जहाज खेवट सही, सुख सागर के हंस आए भक्ति ही रंबर उर धरी, कोटि भानु पर कास पूर्ण रोम रोम की लार है, अचल अभंगी है सतसंगी अवगत का दीदार है। धन सत्य गुरु उपदेश देवा चौरासी भ्रम मेटही, तेज पहुंज तन देह दर कर इस विधि हमको बैठही। शब्द निवास आकाश वाणी यो सत गुरु का रूप है, चंद सूर ना पवन पानी न जा छाया धूप है, रहता रमता राम साहेब अवगत अलह अलेख है। भूले है पंथ विटंबवादी वो कुल का खाविंद एक है, रोम रोम में जाप जप ले अष्ट कमल दल मेल है, सुरत निरत को कमल पठावो जा दीपक बिन तेल है। हरदम खोज हनोज हाजर तिरवेणी के तीर हैं, दास गरीब तबी बसत गुरु बंदी छोड़ कबीर हैं। हरदम खोज हनोज हाजर तिरवेणी के तीर हैं, दास गरीब तबी बसत गुरु बंदी छोड़ कबीर हैं। क्या बताया कि गैबी ख्याल विशाल सतगुरु असल दिगंबर थीर हैं। गैबी ख्याल यानी ये एक विशेष विचार है, गुप्त विचार है, इनको कोई नहीं समझ सकता। और असल दिगंबर थीर हैं वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सदा सखाई अर्थात अविनाशी हैं, और वो हमारी भक्ति को भाव को बनाए रखने के लिए, सत भक्ति को यहाँ बनाए रखने के लिए, इस कारण से भक्ति के हेत भक्त हेत अपनी प्यारी आत्माओं के लिए यहाँ पर आ जाते हैं। और काया धर आए, जो वास्तविक शरीर है परमात्मा का उसको हम चरम दृष्टि से नहीं देख सकते, उसके ऊपर एक ओवर कोट हल्के तेज पुंज का बनाकर परमात्मा इस विधि हमको मिलते हैं, ऐसे हमें आकर मिलते हैं। कायाध्याय वो अविगत सत कबीर हैं, अविगत जिसको कोई नहीं जानता, वो अविनाशी सत कबीर, हक्का कबीर, अल्लाह कबीर, वो पूर्ण परमात्मा अविनाशी कबीर हैं। नानक दादू अगम अगादू और तेरी जहाज खेवट सही, इन महापुरुषों को भी, श्री नानक साहिब जी को, श्री दादू साहिब जी आदि को भी उसी परमात्मा ने पार किया। और उस सुख सागर के हंस आए भक्ति हिरंबर उर्धरी, कोटि भानु प्रकाश पूर्ण करोड़ सूर्यों का प्रकाश रोम रोम की लार है, अचल अभंगी है सत्संगी ये अवगत का दीदार है, उस परमात्मा का ऐसा दर्शन है। धन सतगुरु उपदेश देवा चौरासी भ्रम मेट ही, और तेज पुंज तन दे धर के इस विधम को भेंट ही। धन है वो परमेश्वर जो आप ही सतगुरु बनकर आए और हमारा इस संसारिक जन्म मृत्यु के चक्कर से हमारा झंझट मिटा दिया, उन्होंने वास्तविक ज्ञान दे दिया। शब्द निवास आकाशवाणी, शब्द निवास शब्द का अर्थ समझो अविनाशी तत्व, यानी परमात्मा वहां अविनाशी रूप में, स्थाई रूप में, अविनाशी रूप में रहते हैं। और आकाशवाणी उनकी ये अमृतवाणी ही उनका अब यहाँ स्वरूप समझो, उनके दिए हुए विचारों को उन्हीं का आदेश समझो। जैसे ये कवर है अंदर हमारा एक शरीर का, इसमें से जो हम बोल रहे हैं ये इसके अंदर सारा हमारे जो इसमें था वो सारा बाहर आ गया, तो ये जो वाणी बोल रहे हैं उनके विचार हैं, बाकी ये पांच तत्वों का पुतला था। तो ये जो उनकी अमर वाणी है ये उन्हीं का रूप, उन्हीं का आदेश, उन्हीं का वास्तविक संकेत समझो। रहता रमता राम साहेब अवगत अलेख है, और बुल्ले पंथ विटंब वादी, विटंब ये डोंगी, वादी माने ये वाद विवाद करने वाले, अपने अपने थ्योरी बनाकर सिद्धांत बनाकर पुस्तकें बनाने वाले, ये सब भूले पड़े हैं सब पंथ। वो तो एक ही सबका पति है, एक ही मालिक है, खाविंद है, कुल का खाविंद एक ही है, वो परमात्मा कबीर है। रोम रोम में जाप जप ले अष्ट कमल दल मेर है, अर्थात अपनी भक्ति को बढ़ाओ, श्रद्धा बढ़ाओ, प्यार बढ़ाओ प्रभु में। एक समय ऐसा आएगा जब आप सिमरण करोगे या परमात्मा की कोई याद आएगी, आपका रोम रोम कांपने लग जाएगा, रोम रोम में एक सरसराट होगी अंदर से, ऐसे ऐसी एक जो है ना हिलोर सी उठा करेंगी, एक थ्रिलिंग सी होगी सारे शरीर में। वो ऐसा जाप बहुत ज्यादा जाप के तुल्य होता है, ऐसा जाप जो होता है जिसमें स्मरण करते समय एक आध बार कभी कभी और रोंग रोंग खड़े होने लग जाएंगे, तो वो आपके इतने जाप के तुल हो गया, 3.5 करोड़ रोम को माने गए, तो एक ही ऐसा जो जाप होगा तो इतना जाप आपका काउंट हो जाता है। फिर कहते हैं सुरत नृत्य को कमल पठाओ, रोम रोम में जाप जपले अष्ट कमल दल मेल है, 7 कमलों का ज्ञान है, मूल कमल, स्वाद कमल 2, नाभि कमल 3, हृदय कमल 4, 5वां कंठ कमल, 6ठा त्रिकुटी और 7वां सहस्रार कमल। वो अष्ट कमल दल 8वें कमल में वो सतलोक में परमात्मा का मिलन होगा। हृदय हरदम खोज हनोज हाजिर त्रिवेणी के, फिर कह सुरत नृत को कमल पठाओ, जहां दीपक बिन तेल है, जैसे प्रत्येक कमल में रोशनी है, प्रत्येक कमल में, क्योंकि मूल कमल में गणेश जी का वास है, उनका लोक है, वो लोक तेजो में है, अपने आप सौ प्रकाशित सभी लोक हैं, और उन भगवानों के शरीर भी सौ प्रकाशित हैं। तो उस कमल को जब दूर से हम देखेंगे, जैसे कोई वस्तु वहां 10-20 आप लाइट इकट्ठी जगा दो, बिल्कुल थोड़े थोड़े समय स्थान पर बल्लभ, तो दूर से देखेंगे वो प्रकाश पुंज दिखाई देता है, निकट जाएंगे तो पता लगेगा ये तो 1-1 फुट की दूरी पर काफी बल्लभ लगे हैं। तो ऐसा जब दूर से देखते हैं तो तुम वहां कहते हो वो उसमें उस कमल में बगैर दीपक के ही, उस दीपक में बगैर तेल के रोशनी है, अर्थात तो उसका कोई व्यवस्थक नहीं है, तो वो अपने आप जल रही है, वो ज्योत जल रही है, वो चमक दिख रही है आपको। तो कहते हैं हरदम खोज सुरत नृत को कमल पठाओ, जहां दीपक बिन तेल, हरदम खोज हनोज हाजिर त्रिवेणी के तीर, हरदम प्रत्येक श्वास के द्वारा उस परमात्मा की भक्ति करो और उसको पाने की एक इच्छा विशेष रखो। तो वो त्रिवेणी के तीर है, इस एक ब्रह्मांड में ही त्रिवेणी बनी है, 3 रस्ते हैं, तो वहां उस त्रिवेणी के ऊपर आपको त्रिकुटी में आपको परमात्मा मिलेगा, और वहां से वो ही परमेश्वर आपको ब्रह्मरंध्र खोलकर आगे ले जा सकता है, और कोई मार्ग नहीं है। तो वो इस दास के रूप में आपको वहां मिलेंगे परमेश्वर, पूर्ण संत के रूप में, और जो काल की भक्ति करते हैं काल उनके रूप में, फिर वहां काल भी मिलता है, वो उनको उसी स्थान पर ले जाता है उनका गाइड बनकर, जिस देव की उसने भक्ति की है उसी के वहां छोड़ देता है। ऐसे परमात्मा अपने हंस को फिर सतलोक ले जाता है, और वो उस गुरु के ही रूप में आपको वहां परमात्मा दर्शन देते हैं। इसी पर कारण इन संतों ने गुरु को गुरु का ही रूप भगवान मान लिया, और उस प्रवास्तिक परमात्मा से उच्च परिचित नहीं हो पाए। उसके विषय में कौन बताया कि हरदम खोज हनोज हादर त्रिवेणी के तीर है, दास गरीब तबीब सतगुरु बंदी छोड़ कबीर है। अब इन बातों को सुनकर फिर क्या बताते हैं गरीबदास जी, अपनी अमृत वाणी सुना रहे हैं और वो सुनने वाला भी गदगद हो रहा है। सामने बैठा है वो महापुरुष, लेकिन वो गांव वाले तो बेड का गबीन बजावे ऐसे बैठे सुन रहे हैं, ये क्या कह रहा है, हमने तो कोई समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या बताते हैं, तो जब धर्मदास से कहते हैं कबीर साहब मुझे धर्मदास के पास, वहां क्या क्या देखा हमने, कहते श्वेत सिंहासन से तय अंगा, श्वेत छत्र जगत सेत हिरंगा, सेत यानी श्वेत। कबीर साहब गरीबदास ने गरीबदास साहब जी उस महापुरुष को अमृत वाणी सुना रहे हैं। श्वेत श्वेत सिंहासन श्वेत ही अंगा, श्वेत छत्र जा का श्वेत ही रंगा, उस परमात्मा का श्वेत सिंहासन है और श्वेत ही उनका रूप है और सब अंग भी श्वेत ही हैं, उस परमात्मा के सफेद हैं। श्वेत सिंहासन श्वेत ही अंगा, श्वेत छत्र जा का श्वेत ही रंगा, उनका छत्र भी श्वेत सफेद ही है। श्वेत खवास श्वेत ही चौरा, श्वेत पोप श्वेत ही भौरा, सेत नाद सेत ही तूरा, सेत सिंहासन नाचे उरा। वहां पर कहते हैं जो ये नकली यहाँ के सांग हैं उनसे अच्छा उस परमात्मा के दरबार में हर व्यवस्था है। फिर क्या कहते हैं कि श्वेत नदी जा श्वेत ही वृक्षा, श्वेत चंदन जा मस्तक चर्चा, श्वेत सरोवर श्वेत ही थाना, श्वेत दजा और श्वेत निशाना। गरीबदास श्वेत श्वेत सरोवर श्वेत ही हंसा, श्वेत जाका सब कुल वंशा, उस परमात्मा का वहां कुल उसकी जो संतान है उनकी शब्द से उत्पत्त हुई है, वो सारी सफेद रंग की हैं, यानी उनका 10-16 सूर्य जितने प्रकाश है, इतना सुंदर शरीर है, बाकी सब सफेद ही सफेद सब चीजें, यानी तेज पुंज से बने हुए सब है। वहां श्वेत सरोवर श्वेत ही हंसा, श्वेत जाका सब कुल बंसा, श्वेत मंदर चंदर ज्योति, श्वेत माणिक मुक्ता मोती, श्वेत गुमट वहां श्वेत ही सथाना, श्वेत ध्वजा वहां श्वेत निशाना। गरीब दास ये धाम हमारा, सुर नर मुनि जन करो विचारा, कि ये ऐसा स्थान ये धाम है हमारा, और तुम सोचो सुरनर यहाँ के देवता और मुनिजनों तुम भी विचार करो तुम कहाँ घूम रहे हो, ये मार्ग ठीक नहीं है। आदि सनातन पंथ हमारा, कहते हैं फिर क्या बताते हैं कि बिन ही पंथ पंथ है भाई। अब वो पूछता है कौन गोपाल दास कि वहां कैसे जाया जा सकता है महाराज, बिन ही पंथ पंथ है भाई, बिन चरणा चल सो जाई, वहां कोई मार्ग मुर्ग कोई नहीं यहां वाला, वो तो परमात्मा और बिना चरणों के यानी ऐसे आकाश में उड़ कर जाया जाता है। बिन ही दे धर जा ध्याना, दे न गे न पिंड न पराना, पिंड ब्रह्मंड वाका नहीं बानी, बाक नहीं बानी, मन बुद्धि सेती अगम निशानी, अलफ इलाम गाम ने गेहा, गगन मंडल में जुड़िया स्नेहा, एता इलम जो दिख लावे, सो सतगुर साचा कहलावे। गरीब दास मन धरे न धीरम, अधर धार पंथ बाट कबीरम। इस परमात्मा की वाणी जो हमारी बातों पर कोई डटता है कोई ना, हमारे इस बातों पर विश्वास नहीं करता उस परमात्मा, ये धीर नहीं धरते किसने सुना है, हमने तीन सैन सराट कमल से आगे कोई सुना ही नहीं है, तो कहते अधर धार वो बाट कबीरम, परमात्मा का जो बाट यानी रास्ता बहुत आगे है। क्या कहते हैं, कह कबीर पुरुष वरियम, गरीब दास एक नौका नाम, एक नाम की नौका जो पार करेगी, मेरे कबीर परमात्मा ने मुझे ये बताई। तो कहते कौन सा मार्ग है प्रभु के पाने का, आज सनातन पंथ हमारा, जानत नाही ये संसारा, पंथों बीच पड़ा है बैदा, पंथों से ती पंथ अलैदा, वेखो बीच पड़ा है बैदा। सठ दर्शन सब खटपट होई, हमरा पंथ न पावे कोई। हिंदू तुर्क कदर न जाने, ये रोजा ग्यास करें दंगताने। दोनों दीन यकीन ने आसा, वो पूरब व पश्चिम निवासा। दहु दीन का छाड़ा लेखा, उत्तर दक्षिण में हम देखा। गरीब दास हम निश्चय जाना, चारों कोट दसों दिस ध्याना। कहते क्या बताना चाहते हैं अदनी गरीबदास साहब जी, कि हमारा तो आदि सनातन पंथ है, हमारा सबसे पुरातन, जिस मार्ग को कोई भी नहीं जानता, सृष्टि बिना रची थी उस समय का ही यही मार्ग है, यही साधना है। सृष्टि रचने के बाद इन लोगों ने अपने मनमुखी सिद्धांत बनाकर ये पंथों में बहदा है, यानी कितने पंथ हैं, सबके विचार नरे नरे, इनके मंत्र नरे नरे, इनकी थ्योरी अलग है। ये कहीं ऐसा भगवान, कोई कैसा नहीं, कोई कह शिव जी पूर्ण, कोई कह विष्णु पूर्ण। कहते हैं भेखो बीच पड़ा है बैदा, सठ दर्शन सब खटपट होई, हमरा पंथ न पावे कोई। सठ दर्शन ये संत जो है तीनों गुणों के उपासक, ये सारे विनाश को प्राप्त होते हैं, इनको रास्ता ठीक नहीं मिला। हमारा पंथ हमारे बिना कोई पा नहीं सकता। कोई कहता है पूर्व में मुंह करके नहीं बैठे मुसलमान, कोई कहते हैं दक्षिण की तरफ मुख करके नहीं बैठे हिंदू, कहते हैं साधना कर दक्षिण की तरफ मुख नहीं करना चाहिए, उधर रावण हुआ था, तुम रावण से इतने डरते हो, कमाल की बात है, मुंह बिना करे इधर कोई बात है या? तो और कोई कह पश्चिम में ऐसे मुंह नहीं होना चाहिए, कोई पूर्व की तरफ, कहते हैं हमने तो भगवान सब स्थान पर देखा, किसी तरफ ध्यान करो, किसी तरह बैठ कर उसकी याद करो, उसकी याद हृदय से कीजिए तो सफल हो गया, अन्यथा इन बनावटी दैन्य बाणे में कुछ नहीं रखा। अब इन बातों को सुनकर और वो दादू साहेब का जो न्याय थे गोपाल दास, तो चक्कर में पड़ गया, अभी तो बालक नहीं है, ये तो बहुत अनमोल बातें कह रहा है। तो उसने कहा कि गांव वालों, ये बावड़ा को नहीं, ये पागल नहीं है, पागल तो तुम हो गए, तुम समझ नहीं सके इस अमृतवाणी को। तो उस 60 साल के वृद्ध ने, गोपाल दास महात्मा ने उस 13 साल के बालक के आगे करबद्ध खड़ा होकर कहा, हे प्रभु ये अमृतवाणी लिखवा दो, आने वाले समय में कलयुग में उद्धार होगा जीवों का। गरीबदास जी चुप हो गए, चल पड़े। गोपाल दास 60 साल का महात्मा, हाथ जोड़े पीछे पीछे, महाराज जी लिखवा दे वाणी, मैं लिख लूंगा और दुनिया के काम आवेगी आपकी अमर वाणी। तो कहते हैं तीसरे दिन, 3 दिन तक वो महात्मा इसी ताक में रहा, कद इनका मूड बने लिखवाने का। तीसरे दिन कहा गोपाल दास अगर पूरी लिखे तो भाई कदे बीच में छोड़ के भाग जाए तो। अग नहीं महाराज, जैसे आप कहोगे इतने मैं आपका अपना मन तो समर्पण क्या है, अपना जीवन ही मालिक के निमित्त लगा रखा है, कोई काम नहीं, मैं बच्चे से फारिग हो चुका हूँ, सारे काम से मैं निवृत्त हो चुका हूँ। तो गरीबदास जी महाराज के ही एक बाग था बेरी का, उसमें एक जांड का जाटी का वृक्ष था, उसके नीचे बैठ के वही गांव के साथ में ही। कहते हैं परमात्मा गरीबदास साहेब आंखों देखा हाल बोला करते थे और गोपाल दास जी लिखा करते थे, और वो आज सदग्रंथ साहेब रूप में हमारे पास विद्यमान है। कुछ शेष वाणी बाद में बोली गई वो भी लिखी गई है, तो मैक्सिमम ये रचना जो है एक स्थान पर बैठकर की गई है। तो इस प्रकार गांव वालों ने जब समझा, फिर भी ना माने गांव वाले, तो अभी 60 साल का बाबा जी भी पागल हो गया, इस बालक की पीछे पीछे फिर है बता, आए थे इलाज करवाने, ये भी बावड़ा हो गया। तो हमारी इतनी ही वृत्ति, हम इतना ही ज्ञान जानते हैं, क्योंकि इस रहस्य को वही जान सकेगा जो परमात्मा से परिचित या उसका कृपा का पात्र होता है। अब गरीबदास साहिब ने अपने परमात्मा की पूरी ठोक कर गवाही दी कि इसी परमात्मा ने श्री नानक साहिब को पार किया, इसी परमात्मा ने दादू साहिब को पार किया। अब आपको आदरणीय नानक साहिब जी को कैसे परमात्मा मिले थे ये कथा और सुनाते हैं, क्योंकि जब तक हम अपने परमात्मा के परिचित नहीं होंगे और हमारा दिल नहीं मानेगा कि सचमुच ये तो मालिक ही है, तब तक हमारी दृढ़ श्रद्धा नहीं हो सकती। और सच्ची श्रद्धा बिना भगवान में लेना फिर अनन्य मन से हम भक्ति करेंगे जब हमारा निर्णय हो जाएगा सचमुच परमात्मा यही है और दूसरा है नहीं, तभी हम भक्ति के योग्य होंगे। इसी प्रकार गीता जी में लिखा कि अर्जुन जब तू नाना प्रकार के भ्रमित करने वाले शास्त्रों से हटकर तेरी बुद्धि एक ही तत्व ज्ञान पर रुक जाएगी उस समय तो तू साधक होगा, तब तो तू योगी होगा, तब तो तू भक्ति के योग बनेगा, तू डगमग नहीं होगा, फिर अनन्य मन से ढंग से लग जाएगा। आदरणीय नानक साहिब जी का जन्म सन 1469 में हुआ। कहां हुआ? पश्चिमी पाकिस्तान, पहले सारा हिंदुस्तान ही था, उसमें तलवंडी नामक एक शहर है, वहां पर श्री कालूराम मेहता खत्री के घर पे आदरणीय श्री नानक साहिब जी का आविर्भाव हुआ। श्री नानक साहिब जी की कुछ पहले की हिस्ट्री कहानी सुनाते हैं। यही श्री नानक साहिब जी वाली पुण्यात्मा पहले राजा अम्बरीश थी सतयुग में। राजा अम्बरीश थे, ये इतनी पुण्य साधना की इन्होंने, इतनी सच्ची लगन से साधना की भगवान विष्णु जी की कि इनके सामने दुर्वासा जैसी तोब भी नतमस्तक होकर हार कर गई थी। दुर्वासा जी ने इनको मार्गदर्शन करना चाहा था, क्योंकि जिसने जितना ज्ञान है वो अपने ज्ञान को श्रेष्ठ मानता है और दूसरे को मूर्ख समझता है, लेकिन ज्ञान इन सभी को नहीं था, पूर्ण ज्ञान नहीं था, फिर भी अपनी अपनी थ्योरी सी को दृढ़ मानते थे, सिद्धांत को पक्का मानते। तो दुर्वासा जी भगवान को निर्गुण रूप से मानता था और निराकार ही मानकर उसकी साधना करके अपनी सिद्धि प्राप्त करके वो हल्दी की गांठ का पंसारी बन गया था। अब उसने एक दिन राजा अम्बरीश को देखा कि वो एकादशी का व्रत भी कर रहा है और साथ में भगवान विष्णु की साकार मूर्ति रखकर पूजा भी कर रहा है। मूर्ति की पूजा नहीं कर रहा था वो, मूर्ति वैसे रखना पाप नहीं, बल्कि मूर्ति का सत्कार पाप नहीं, बुरा नहीं, लेकिन उसी पर आधारित हो जाना और सत भक्ति ना करना वो पाप होता है। मूर्ति की ही पूजा पाप होती है, सत्कार पाप, बुरा नहीं होता। तो वो दुर्वासा ने देखा कि नादान क्या साधना कर रहा है, इसको मैं सतमार्ग बताता हूं। तो उसने क्या कहा कि तो आप ये जो साधना कर रहे हो ये व्रत भी त्याग दो और ये सरगुण पूजा मत करो, मैं जो साधना बताता हूं ध्यान लगाओ। अब ऋषि जी ने सोचा, उस दिन आ गया जिस दिन उसका एकादशी का व्रत था, किसका? राजा अम्बरीश का। तो दुर्वासा जी ने कहा कि मैं खाना, दुर्वासा जी ने से कहा अम्बरीश जी ने कि भोजन पाओ ऋषिवर। तो दुर्वासा जी ने कहा मैं पहले स्नान करके आता हूं फिर मैं खाना खाऊंगा। तो उधर से क्या जिसने जो गुरु बना रखे थे अम्बरीश राजा ने, उस गुरु ने बताया कि एकादशी का व्रत को इस समय से पहले पहले खोलना होता है, उसमें केवल जल आहार करना होता है। तो ये जल आहार तो इस समय करना है तूने। तो उसने जल आहार कर लिया ऋषि दुर्वासा के आने से पहले, और व्रत नहीं रखते थे राजा अम्बरीश, वो वैसे उसका तरीका कुछ और होता है, जैसे संयम करते थे, जैसे कोई 8 रोटी खावा है 10 रोटी खाता है डेली, तो 1 रोटी प्रतिदिन कम करते करते एकादशी वाले दिन वो बिल्कुल रोटी नहीं खाता था। ऐसे उसने व्रत समझो या संयम से अपना ये कार्य करता था, ताकि अपना अभ्यास बना रहे, भक्ति में ध्यान लगा रहे, इस विधि का तरीका अपना रखा था उन्होंने। तो उसके कारण दुर्वासा जी ने कहा कि ऐसे मत किया करो, तुम ऐसे साधना करो। अम्बरीश जी ने सोचा ये कौन सा रोज रोज आवे है, कह दे अच्छा जी जैसे आपका हुक्म, वो चले गए। और फिर अगली बार दुर्वासा जी फिर उसी दिन आ गए जिस दिन एकादशी थी, वो फिर वैसी क्रिया कर रहा था। तो दुर्वासा जी ने गुस्सा होकर के, तू मेरी बात को नहीं मानता है, मैं कहता हूं ऐसा क्यों नहीं करता है? अपनी सिद्धि से एक चक्कर छोड़ दिया उसको, सुदर्शन चक्कर छोड़ दिया मारने के लिए, किसको? अम्बरीश राजा को। अब हमारे मन में एक शंका उड़ाती है कि ये कहां से ज्ञान ले आए, सुदर्शन चक्कर तो विष्णु जी के पास ही होता है। नहीं, एसपी के पास भी पिस्टल होता है, थानेदार के पास भी होता है, उसको नाजायज जुर्म सा प्रयोग करेगा दोनों अंदर हो जाएंगे। तो उसने निर्दोष पर प्रयोग कर दिया, किसने? अम्बरीश ने, अम्बरीश के ऊपर, और दुर्वासा ने वो सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। सिद्धि से एक आग का गोला सा चलता है ऐसे गोल गोल, और भक्कड़ सा पाटता चले। अब अब अम्बरीश के चरण छू कर वो सुदर्शन चक्र और दुर्वासा की तरफ उग्र रूप धार करके मारने के लिए चल पड़ा। आकाश में उड़ गया सिद्धि ते, कहां पहुंचा? इंद्र के पास गया। विष्णु के पास इसलिए नहीं पहुंचा क्योंकि अम्बरीश जी विष्णु के उपासक थे और विष्णु के पास जाऊंगा तो विष्णु धमका देगा मुझे, उसका शिष्य है ये। तो पहले गार इंद्र के पास, इंद्र ने कहा भी दुर्वासा जी मेरे बस की बात नहीं, मुझे क्यों मरवावे, तुम शिव जी के पास जा। अब शिव जी के पास गया, शिव जी देखा उस साथ में और है इतनी दूरी से ऐसे पूरी बिजली सी पाठ चमकती हुई। शंकर भगवान ने से अपनी रक्षा की भीख मांगी तो शंकर भगवान ने कहा मेरे बस की बात नहीं, तो बहुत उग्र रूप धारण कर रखा है, आप ब्रह्मा के पास जाओ। ब्रह्मा के पास क्या, ब्रह्मा जी बोले मेरे बस की बात नहीं स्वामी जी, आप विष्णु जी के पास। अब मरता क्या नहीं करता, विष्णु जी के पास क्या। जब विष्णु जी के पास पहुंचा तो वहां क्या देखा कि वो इतनी दूर खड़ा हो गया सुदर्शन चक्र और अम्बरीश बात कर रहा है और वो एक 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 श्री विष्णु जी से बात कर रहे हैं, दुर्वासा याचना कर रहे हैं मुझे बचाओ भगवान, मुझे बचाओ भगवान। और वो सुदर्शन खड़ा खड़ा इंतजार कर रहा है कि अब क्या आदेश होगा। दुर्वासा को इतना यकीन हो गया कि वो रुक तो गया, तो भगवान विष्णु से कहा मुझे मेरी रक्षा करो। विष्णु जी ने कहा क्या आपने क्या गलती कर दी ऋषि जी, तुम सारी कहानी बताई। तब विष्णु जी ने कहा ठीक है आप अपनी भक्ति करो, ये बाई फोर्स नहीं लगाना होता किसी को, जबरदस्ती करना पाप होता है। आप ज्ञान दो, आपका ज्ञान मानता है तो वो माने, नहीं मानता तब करता रहे, जबरदस्ती मत करो। और वो एक बात सुनो मेरी, वो ये ड्रामा नहीं कर रहा जो तुम सोच रहे हो, न वो व्रत करता है न ही वो मूर्ति की पूजा करता है, वो तो संयम करके ध्यान लगाता भक्ति करता है और उसकी साधना बिल्कुल सही है जो मेरे लेवल की है, वो पाखंड नहीं कर रहा जैसे आपकी धारणा है। तो अब जाकर के उसके चरणों में वही अक्षमा याचना करो, वही अक्षमा करेंगे तो ये तेरी जान बचेगी, ना तो मेरे बस की बात है। अब दुर्वासा जी का यह बात जचे नहीं कि जब भगवान के दरबार में मेरी रक्षा नहीं तो वहां इसके दरबार में कैसे होगी। तो विष्णु जी ने कहा मैं जो कह रहा हूं ऐसा करो, तेरी जान वही बचेगी, मेरे बस की बात नहीं। उसे माफी मांगना करके उसके चरणों में जाकर अब वापस आए, वापस आकर के अक्षमा याचना की अम्बरीश से। राजा अम्बरीश ने कहा दुर्वासा जी भक्ति के भाव से चलना चाहिए, मैंने कुछ नहीं किया, आपका किया आप ही को मिला है। अम्बरीश जी ने वो सुदर्शन चक्र पकड़ के और उसका पकड़ा दिया हथियार के लिए गाल ले गोज में। ऐसे महापुरुष हुए और इसके कारण फिर वो पूरा सतयुग में स्वर्ग में रहे, उसके बाद त्रेता युग में राजा जनक बने। अपनी वो पुण्य मलाई खा करके राजा अम्बरीश जी फिर राजा जनक बने, और राजा जनक बने तब भी वो काफी राजा थे, काफी रानियां थी, लेकिन श्रद्धा भक्ति की, क्योंकि पहले की भी आस्था भगवान की भक्ति की फिर भी विद्यमान रहती है, वो तड़फ थी, ऋषियों से पूछते थे मुझे भक्ति मार्ग बता दो। तो अष्टावक्र मिले उनको, उन्होंने विधि बताई, उस कारण फिर वो साधना करते थे। तो उसमें बहुत अच्छे महापुरुष थे जो सीता जी के मुंह बोले, माता पिता पिताजी कहलाते थे। अब राजा उस राजा जनक से सुखदेव जी ने भी उपदेश प्राप्त किया था जो आकाश में उड़ जाता था। राजा जनक जब जाने लगे यहां से, काल का ऐसा छल है, जब यहां से अपनी भक्ति पूरी करके उनका समय पूरा हुआ तो विमान आया उनको लेने के लिए स्वर्ग के लिए। जब स्वर्ग में जा रहे थे तो काल ने ऐसा जाल फैला रखा कि इनको सबका जाड़ा ले दूं। उनका विमान, राजा जनक जी का विमान ऐसे नरक के पास से गुजरा दिया, भेज दिया कि वहां 12 करोड़ आत्माएं रो रही थी, चिल्ला रही थी, मर गई हमें बचा लो, आए हमें बचा लो। अब संत का हृदय विनम्र हो जाता है, बहुत दयालु होता है। और उस राजा जनक ने उन पायलटों से कहा भी पायलटों रोक, कोई सा विमान नहीं आ पाए, उन्हें विमान रोक दिया कि ये कौन किसकी रोने की आवाज आ रही है। पता किया उन्होंने, बता दी ये तो एक नरक है, इसमें अपना किया हुआ दंड भोग रहे हैं। राजा जनक कहते हैं कि इनको छोड़ दो सबको। अब वो पार्कद कहने लगे, वो फरिश्ते कहने लगे, राजन ये यहाँ तुम्हारा राज नहीं चलेगा, तुम्हारा आदेश नहीं चलेगा यहाँ पर, यहाँ तो धर्मराज का चलता है। तो उन्होंने कहा धर्मराज से मेरी प्रार्थना करो। धर्मराज से अर्ज की कि राजा जनक जी आगे नहीं आ रहे हैं, वो कहते हैं इनको छोड़ दो, नहीं तो मुझे भी यहीं उतार दो। अब धर्मराज आ गया, कहने लगा राजन ये अपनी कर नहीं पा रही है, या जो जिसने जैसा किया उसका भोगना ही पड़ता है, इनको नहीं छोड़ा जा सकता, आप चलिए अपने स्वर्ग में, आपका स्थान तैयार है। राजा जनक ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, इनको भी मेरे साथ ले चलो। तो धर्मराज ने कहा कि इसके प्रतिफल में आपने पुण्य संकल्प करने होंगे अपने। अब राजा जनक ने कहा मैं तैयार हूं। अब आद्य पुण्य संकल्प कर दिया उन 12 करोड़ आत्माओं को, उन राजा जनक के किए हुए संकल्प दिए हुए पुनों के रेशों बना करके उन 12 करोड़ आत्माओं को उसी विमान में बैठा के और फिर स्वर्ग ले गया राजा जनक। अब जब तक राजा जनक के द्वारा दी हुई वो पुण्य कमाई उन 12 करोड़ आत्माओं के साथ रहेगी, वो स्वर्ग में रहेंगे और अपने पूर्व के पापों को भोगने के लिए पुनर्नरक में आना ही पड़ेगा, ये यहाँ का अटल नियम है। उधर से राजा जनक भी खाली करा दिया, आधा जी आधी पुण्य खत्म हो गए उसके, आधे के फिर वो स्वर्ग में रहा। उसके बाद वही आत्मा श्री नानक जी के रूप में श्री कालू राम मेहता के घर उनका आविर्भाव हुआ, श्री नानक जी के रूप में सन 1469 में। अब पिछले संस्कार थे, भक्ति करते हुए युगों युगों आ रहे थे, वही तड़फ, उसमें कुछ सिद्धियां रहती हैं शेष रह जाती है, उनके आधार पर उनकी तड़फ थी, परमात्मा की चाह थी, सच्चा सौदा कर दिया, पिताजी ने भेजे थे कुछ पैसे देकर वो साधुओं में बैठ दिए तेर, और फिर ऐसे काफी उनका ऐसे महिमा का वर्णन आता है। नानक जी की शादी हुई, 2 पुत्र हुए। श्री नानक जी अपनी बहन नानकी की ससुराल में सुल्तानपुर नगर में, वहां नवाब के यहां मोदी खाने में नौकरी करते थे, भंडार घर में, और ऐसे प्रभु की चाह थी। और साथ बचपन में उनके हिस्ट्री में लिखा है, उनके जीवनी में लिखा है कि ब्रजलाल पांडे से उन्होंने गीता जी का अध्ययन किया, और पांडे जी ने जो उनको ज्ञान कराया कि श्री कृष्ण ही पूर्ण परमात्मा है, ब्रह्मा ये विष्णु जी सर्वशक्तिमान है, श्री कृष्ण जी ने वही उनका अवतार था, कृष्ण जी ने गीता बोला, जैसा कि आम पवित्र हिंदू धर्म के अनुयायियों को दंत कथा लोक वेद का ज्ञान है, ऐसा ही श्री नानक जी को भी ज्ञान था। और वो अपना एक ओंकार का रट लगाते थे, ओम नमः ओम भगवते वासुदेव नाम का जाप करते थे, जैसा उनको बताया गया था। एक और प्रतिदिन वहां सुल्तानपुर शहर के साथ से बह रही दरिया बेई दरिया में वो स्नान करने सुबह सुबह जाते थे। एक दिन परमात्मा कबीर साहेब, क्योंकि आदरणीय नानक साहेब जी पूज्य कबीर परमेश्वर जी का समकाल भी इनका काफी रहा है, सन 1398 से और सन 1518 तक परमात्मा 120 वर्ष तक रहे बनारस में सह शरीर, उसके बाद सह शरीर चले गए थे, और 1469 से लेकर और नानक जी भी फिर 69 वर्ष तक जिए थे, तो उनका काफी समय 49 वर्ष का समय उनका आपस में समकाल बनता है। तो एक जिंदा महात्मा का रूप बनाकर उसी बेई नदी के ऊपर प्रगट हुए जहां पर श्री नानक जी सुबह सुबह स्नान करने जाते थे। श्री नानक जी वहां पहुंचे, महात्मा जी को देखा, उनके पास बैठकर चर्चा करनी चाही, तो कबीर साहब ने एक जिंदा महात्मा के रूप में थे और नानक साहब जी वहां बैठ के अपना नहा धोकर प्रथम बार स्नान करके और चिंतन कर रहे थे। चिंतन करने के बाद नानक जी ने उनसे पूछा कि हे महात्मा जी, मैं कुछ आपसे भक्ति मार्ग पूछना चाहता हूं। कबीर परमात्मा ने कहा श्री नानक जी से कि हे महात्मा जी, मैं आपसे कुछ भक्ति मार्ग पूछना चाहता हूं, मैं सब जगह भ्रम भटक लिया, मुझे मार्ग नहीं मिल रहा। अब श्री नानक जी ने सोचा भी जब ये मुसलमान साधु और ये ऐसी साध मेरे से पूछ रहा है, तो उन्होंने पता था कि जैसे अपना ज्ञान होता है कि मुसलमानों को भक्ति मार्ग का ज्ञान नहीं है और हमारी गीता जी में श्रेष्ठ ज्ञान है, मैं इसको समझा दूं इसका उद्धार हो जाएगा। श्री नानक जी ने कहा कि बैठ जा जिंदा, तेरे भाग उदय हो गए। मैं बताता हूं, भगवान विष्णु सर्वशक्तिमान हैं, यही पूजा के योग्य हैं, ये सृष्टि के रचनहार हैं, इन्होंने गीता जी बोला है और गीता जी का ज्ञान उस समय दिया था, ना कोई हिंदू था ना मुसलमान, ये किसी व्यक्ति विशेष का शास्त्र नहीं है। और इसमें कहा कि मेरी भक्ति कर, तेरा मोक्ष हो जाएगा। तो परमात्मा ने कहा ठीक है, मैं आपको आप जो बताओगे मैं सुनूंगा, मुझे भक्ति विधि और मार्ग बताना। तो श्री नानक जी ने कहा कि पहले मुझे गुरु बनाना पड़ेगा तुझे, तब मैं तुझे नाम आदि दूंगा जब ये कामयाब होगा, क्योंकि गुरु के बिना भक्ति सफल नहीं होती। तो परमात्मा ने कहा ठीक है, मैं आपको गुरु धारण करता हूं, मुझे तो कल्याण चाहिए अपना। तो कबीर साहब ने कहा कि मैं कुछ अपनी शंका समाधान चाहूंगा ताकि मैं आपकी शरण दृढ़ता से ग्रहण कर सकूं। तो परमात्मा ने कहा कि आप जो साधना कर रहे हो, कहां जाओगे नानक जी? कि स्वर्ग जाऊंगा। तो स्वर्ग में कितने दिन रहोगे? स्वर्ग में अपनी जितनी पुण्य कमाई होगी उतने दिन रहूंगा, फिर कहां जाओगे? फिर क्या पता कहां जूनी मिलेगी। तो परमात्मा ने कहा कि आपके विष्णु जी भी नाशवान है और ब्रह्मा जी भी नाशवान है, शिव जी भी नाशवान है, और गीता जी के 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा कि ब्रह्म लोक से लेकर ये सभी लोक पुनर्वर्ती में हैं, ये सब विनाश में आते हैं। तो तुम ना ब्रह्मा रहेंगे, ना विष्णु रहेंगे, ना शिव रहेंगे, तब ये जीव कहां रहेगा? और आप भगवान विष्णु ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है? श्री नानक जी कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के कोई माता पिता नहीं। जैसे हम ये दंत कथा लोक वेद सुना करते हैं, ऐसी पट्टी सब ताई पढ़ा रहे किन पांडव ने, तो वो कहते हैं कि कोई माता पिता नहीं, अजरो अमर है, इनका कोई जन्म मृत्यु नहीं होती, ये तो अविनाशी है, श्री कृष्ण जी अविनाशी है। तो परमात्मा ने कहा कि गीता जी का ज्ञान किसने बोला? श्री कृष्ण ने बोला, श्री नानक जी ने कहा। परमात्मा ने पूरी कहानी सुनाई कि श्री गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं, इसमें काल ने प्रवेश करके बोला। 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में लिखा है कि मैं काल हूं, सबको खाने के लिए आया हूं। क्या श्री कृष्ण जी काल थे? अब श्री नानक जी एकदम सतब्ध हो जाते हैं कि सचमुच श्री कृष्ण जी तो काल नहीं थे। फिर कहा कि 4थे अध्याय के 5वें श्लोक में लिखा कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। ये स्वयं कहता गीता बोलने वाला प्रभु कि मैं तो नाशवान हूं। फिर बताया कि देवी भागवत 3रा स्कंद में भगवान विष्णु स्वयं कहता है, ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि विष्णु जी ने जब माता को देखा तो ये कहता है कि मुझे याद आ गई कि ये अपनी माँ है और मैं छोटा सा बालक था उस समय, ये मुझे पालने में जुला रही थी, मैं अपने पैर के अंगूठों के मुख में चूस रहा था। विष्णु जी स्तुति करते हैं, हे माता तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये संसार तुम्ही से उद्वासित हो रहा है, मैं ब्रह्मा और विष्णु हम तो आपसे आप ही से उत्पन्न हुए हैं, हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, हमारा तो आविर्भाव और त्रोभाव हुआ करता है, आविर्भाव माने जन्म, त्रोभाव माने मृत्यु, हम अविनाशी नहीं हैं। भगवान शंकर कहते हैं माता जब ब्रह्मा आपसे उत्पन्न हुआ और विष्णु जी आपसे उत्पन्न हुआ तो ये तमोगुण भगवान शिव जी भी तापी का बेटा हुआ। शिव पुराण के 6ठे रुद्र संहिता के अध्याय नंबर 6 और 7 में लिखा है कि सदा शिव और दुर्गा से इस प्रकृति तय विष्णु जी की उत्पत्ति हुई, और इसी प्रकार ब्रह्मा जी कहते हैं मेरी भी उत्पत्ति की। आप इनको अजरोमर बता रहे हो। फिर गीता जी के अध्याय नंबर 7 के 12 और 15 तक मंत्र में कहा है कि इन तीनों गुणों की भक्ति मूर्ख लोग करें, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, उत्तम गुण शिव जी। इसलिए कहा कि उस परमात्मा के विषय में किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में मैं नहीं जानता। गीता बोलने वाला प्रभु अपनी असमर्थता व्यक्त कर रहा है। और 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जिसमें जाने के बाद फिर पुनः लौटकर संसार में नहीं आते, उनका जन्म मृत्यु कभी नहीं होता। वो तेरे भगवान को पता नहीं और ना वो आपको पता, तो आपका मोक्ष हो ही नहीं सकता। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि हे अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान सतलोक को प्राप्त होगा। और मैं वही परमात्मा हूं और मैं उसी का अपना ही सत संदेश लेकर आया हूं। मैं वो तत्वदर्शी संत हूं, मैं भगवान हूं। अब पहली बार कोई ये बात सुना तो कुनीन कैसी कड़वा मुंह होता है। अब नानक जी कहने लगे, जिंदा तू ज्यादा मत बोले, और तू आपको ज्ञानी नहीं है, हमारे शास्त्रों का तू क्या जाने, कभी देखा ना, तेने गीता उठा कर देखी नहीं, ज्यादा मत बोले। तो परमात्मा उठकर चल पड़े। उनकी वार्ता सुनने के लिए वहां स्नान करने वाले 10-20 व्यक्ति और बैठ गए। तो बाद में नानक जी से पूछा कि ये कौन था नानक जी जो आपको गुरुजी गुरुजी कर रहा था, क्योंकि परमात्मा ने जिस भी प्यारी आत्मा को शरण में लिया है उसको अपने को तो एक जीव कहा है, उनको एक भगवान और संत कहा है, ऐसे धर्मदास साहिब को बोला था। बाकी ये 4-5 बच्चे रूप बच्चों को मिले थे, इनको अपना सीधा ही परिचय दे दिया था। तो श्री नानक जी ने कहा कि अपना परिचय दिया परमात्मा ने कि मैं काशी में धानक का काम करता हूं, चुलाह हूं और काशी से आया हूं। मैं तो भक्ति मार्ग का भटका हुआ प्राणी हूं, भक्ति अपने संत को ढूंढ रहा हूं। उन्होंने अपना परिचय दिया था। तो कबीर साहब क्या कहा नानक जी ने कि ये काशी में नीच जात का धानक था, अपने आप को श्री कृष्ण से भी बड़ा बतावा था, भगवान विश्व कृष्ण जी को काल कह रहा था, ब्रह्मा विष्णु महेश को ये नासवान बताता है, बुद्धि भ्रष्ट है इसकी, ऐसे उठपटांग कई कई जो ना ऐसे अपशब्द कहे दाता के विषय में। और जब मैंने बताना चाहा तो उठकर चला गया। जिस कारण से जिस वार्ता से सिखों ने श्री नानक जी को कबीर परमेश्वर का गुरु मान रखा है, इतनी सी वार्ता पे। उसके बाद क्या हुआ कि श्री नानक साहिब जी को बेचैनी होगी, घर जाकर के वो गीता जी के श्लोक देखे, फिर वो उस पांडे से पूछा, वो रुद्र संहिता 6वें और 7वें अध्याय को सुना मुझे एक बार, किसी पांडे से पूछा नानक साहिब ने, वो पढ़कर सुनाया कि इसका अर्थ क्या बनता है, वो हिंदी बनाया कि शिव और सदाशिव से और प्रकृति देवी से विष्णु की उत्पत्ति हुई। और पांडे का विष्णु ने बना, विष्णु की उत्पत्ति कैसे हुई, यहां निरुत्तर पांडे भी हो गया। श्री नानक जी ने सोचा भाई सचमुच ठीक कह रहे थे वो, तो ये तो स्वयं भगवान कह रहा 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में काल हूं, और 11वें अध्याय के 21वें श्लोक में कहता है अर्जुन देख रहा भगवान आप तो ऋषियों को भी खा रहे हो, देवताओं को भी खा रहे हो, कुछ आपकी जाड़ों में लटक रहे हैं, ये भगवान ये भयंकर रूप मेरे देखा नहीं जाता। अब श्री नानक जी की रात की नींद और दिन की चैन समाप्त होगी, अंदर से आत्मा से अर्ज करते हैं परमात्मा एक बार फिर दर्शन दे दो, कति बात विवाद नहीं करूंगा, आपसे पूर्ण मार्ग प्राप्त करूंगा। काफी दिन ऐसे तड़फ लगी रही, 6 महीने बीत गए। रोजाना नदी पर जाकर के दरिया पर जाकर देख रहे हैं कि वो आ जाए तो मैं उनसे पूरी वार्ता करूं। एक दिन परमात्मा ने कृपा बख्शी, श्री नानक साहिब जी स्नान करने के लिए तैयार थे, नौकर उनके कपड़े लिए खड़ा था, परमात्मा ने दर्शन दिए। उस दिन केवल वो परमेश्वर श्री नानक जी को दिखाई दे रहे थे, अन्य को नहीं। और इस बात का नानक जी को पता नहीं कि ये अन्य को नहीं दिखाई दे रहे थे। अब जो ही वो दर्शन दिए तो स्नान ना करके नानक जी उनकी तरफ चल पड़े और बैठ गए वहां पर। नानक जी भी बैठ गए, परमात्मा भी कबीर साहब जिंदा महात्मा रूप में बैठ गए। तब श्री नानक जी ने कहा कि जिंदा मैं तेरी बात मान लूंगा, परंतु मैं पहले एक लीला करूं, मैं एक इस दरिया में छुपूंगा, मुझे ढूंढ देना। श्री नानक जी ने दरिया में छलांग लगाई और मछली रूप धारण कर लिया। परमात्मा ने उस मछली को अपस्ट्रीम की तरफ जिधर से पानी आ रहा था उधर ही ले गए, अंदर ही अंदर। नानक जी उधर ही चल पड़े और वहां जाकर 3 किलोमीटर की दूरी पर जाकर उनको नानक जी बना लिया, बाहर बैठा लिया। उधर से दर्शकों ने देखा कि नानक जी ने तो छलांग लगाई थी, बाहर आया कोई नहीं, मर गया, डूब गया, डूब गया, डूब गया। हाहाकार मच गई, गांव में भाजे, नगर में भाजे आए, भागे आए तो वहां से नवाब ने भी सैनिक भेजे, गोताखोर ले गए, मछियारे भी भेज दिए। वो ढूंढ रहे हैं डाउन स्ट्रीम में जिधर नहर का पानी बह रहा था, और वो बैठे हैं अप स्ट्रीम में, जंगल में जा बैठाए। फिर वहां पूरी कहानी सुनाई, सत सृष्टि रचना सुनाई। परमात्मा कहते हैं, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दासे, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाशी। हम इन्हीं चारों योगों में जन्म नहीं हुए, ना जाने कौन से जन्म में ये प्यारी आत्मा श्री नानक साहब जी परमेश्वर की साधक रही थी, जिसके कारण अब भी उसकी भक्ति की तरफ थी, और जैसी वो साधना करते कर रहे हो वेदों अनुसार वो पुनः स्वर्ग में खाकर वापस आ रहे थे, फिर जा रहे थे, फिर आ रहे थे। जैसे रात्रि में आपने श्री महावीर जैन की जी की हिस्ट्री सुनी थी, ये हम सबकी स्थिति ऐसी ही है जब तक वो पूर्ण परमात्मा का वास्तविक मंत्र और विधि नहीं प्राप्त होगी। अब श्री नानक जी ने कहा, ठीक है जिंदा, तेरी बात में दम है, लेकिन मैं जब मानूंगा अपनी आंखों देख लूं। अब देखो, आज तक आपके अतिरिक्त किसी ने कोई ज्ञान नहीं दिया ये, और एकदम विश्वास होना, मेरे बस की बात नहीं। तब परमात्मा ने उनको प्रथम मंत्र दिया और कहा कि सेकंड मंत्र आपको मैं वहां कहते, फिर चल तुझे दिखाता हूं। शरीर वहीं रखा एकांत स्थान पर सुरक्षित, और आत्मा को निकाल कर श्री नानक जी के गरीबदास साहिब की तरह सब लोक दिखाए, ब्रह्मा विष्णु महेश सब दिखा करके और सतलोक ले गए। वही प्रोसीजर किया जैसे दूसरे रूप में तेजो में शरीर करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे, वह सतपुरुष रूप में परमात्मा उस तखत पर बैठे, नीचे से जिंदा रूप में गए हुए उस शरीर दूसरे अपने डबल रोल पर आप ही चवर करने लगे। श्री नानक जी ने सोचा, ए रब जेड़ा तखत ते बैठा, और कबीर तो यहाँ, ये जिंदा तो यहाँ का कोई सेवक हो। श्री नानक साहब ने सोचा कि रब तो ए है जेड़ा तखत ते बैठा। ओहो, कितना सुंदर शरीर, तेजो में शरीर, इनका देखते ही आनंद आते हैं, और ये जिंदा रूप में आया नीचे से, ये कोई फकीर, इनका कोई अनुचर होना, क्योंकि वो चवर कर रहे। इतने में वो ओरिजिनल शरीर खड़ा हुआ और जिंदा वाला शरीर तख्त पर विराजमान हुआ, और वो प्रभु जो तेजो में शरीर युक्त था वो चवर करने लगा। अब नानक साहब जी सोच रहे हैं कि बड़ी अजब लीला है कि भगवान और नौकर पे चवन कर रहा है साधु पर। इतने में वो शरीर उसमें समा गया, अकेले जिंदा रह गए। वो नीचे से गया हुआ शरीर की वेशभूषा, जिस वेशभूषा में थे वो ज्यों का त्यों बैठे हैं, चवर स्वयं सेवा कर रहा है ऑटोमेटिक। अब श्री नानक जी ने कहा, हे भगवान, आप ही मालिक हो, आप मेरे लिए इतना कष्ट पाया आपने, ए परमात्मा, मेरे से बहुत आपके विषय में ऊट पटांग बातें निकल गई, क्षमा करना मुझे। अब श्री नानक जी से परमात्मा ने कहा कि मैं, तुम मेरे बच्चे हो, और तुम्हें काल ने वहां डिवाइड कर दिया, अब हिंदू और मुसलमान तुम दो बना दिए, और इस काल का जाल है नानक जी, क्योंकि इस काल का और मेरा वचन हुआ था। किसने कहा था कि कलयुग में जीव तू कितने ले जाना वापस, और सतयुग में कल इससे पहले मत ले जाना। तो अब इसका देखो, द्वापर तक कोई धर्म नहीं था, कोई मजहब नहीं था, और अब तुम्हें दो रूप दो बांट दिए, दो बना दिया, तुम मेरे बच्चे हो, और तुम्हारे कोई इसने जानबूझकर फंसा रखा है। पूरी सारी कहानी सुनाई कि मैं काशी में भी गया हुआ हूं, बनारस में, और वहां पर जुलाहे का धानक का काम करता हूं, और यदि आपने सतनाम चाहिए मेरे पास वहां आ जाना काशी बनारस में, और वहां रामानंद जी मेरे गुरु हैं, और सतनाम बिना मुक्ति हो नहीं सकती। सतनाम ये दो मंत्र का जाप है, उसमें एक ओम है और एक वो तत् मंत्र गुप्त है। अब इतनी वार्ता सुनकर और परमात्मा ने ऐसे इस सिलसिले में तीन दिन बीत गए। उधर से श्री नानक जी की टोह पड़ी, उनको मर्त जान लिया कि वो तो दरिया में डूब गया। अब तो हे भगवान क्या हो भाई, सारा हाहाकार मची हुई थी, शोक व्यक्त हो रहा था। तीसरे दिन वही परमात्मा नानक जी उसी समय स्नान करने वाले समय पर और वहां आते नजर आए, तो स्नान करने वाले लोगों ने देखा नानक साहब तो जीवित हैं, सब उसको देखने भागे, देखा सचमुच ये तो जीवित हैं। तो उनसे पूछा तुम कहाँ गए थे, उन्होंने कहा मैं सचखंड गया था, मेरा भगवान मुझे लेकर गया था, अब वो काशी में मिलेगा, मैं उसकी तलाश करूंगा। उधर से गांव की तरफ भाग लिए, यो हो भगवान श्री नानक साहब जी वापस आ गए हैं, दरिया में डूबे नहीं है। उनकी बहन जी भी भाग ली और सब देख, नगर निवासियों का भी लाइन लाएगी, सब भागे भागे जा रहे हैं। अगले दिन अपनी ड्यूटी पर चले गए नानक साहब, और वहां जाकर के खजाने का ताला खोल दिया, क्योंकि तीन दिन हो गया था लोगों को कोई वो सामान नहीं मिला था। तो नानक साहब ने भंडार घर खोल दिया कि ले जाओ, 1, 2, 3, 11, 12, 13 तक गिरना बंद कर दिया, 13 ही 13 वो सब लुटा लुटू के और पहर के जिंदा जैसा वेशभूषा, जिस वेशभूषा में भगवान थे वो जिंदे जैसी वेशभूषा बना के और शमशान घाट पे जाकर बैठ गए। अब शमशान घाट पर पहुंच गए तो उधर से सुल्तानपुर के नवाब को शिकायत होगी कि आपके खजानची ने, आपके मोदी खाने के नौकर ने आपका खजाना लुटा दिया और वो शमशान घाट पर जा बैठा। अब श्री नानक जी की नौकरी लगवाने में उनके जीजा जी जिनका नाम श्री जयराम था वो विटनेस थे, वो गवाह थे, वो उसके जो है जमानती थे। तो सुल्तानपुर के नवाब ने उनके जीजा जी को बुला लिया कि मेरे सामने अकाउंट कर तेरे रिश्तेदार का, और कमी पाओगी तो मैं तेरे से ले लूंगा। अब अकाउंट करने लगे तो 760 रुपए उस प्यारी आत्मा नानक जी के खजाने सरकार की तरफ ज्यादा पाए। बोलो सतगुरु देव की जय। अब पहले पुण्यात्मा होते थे, चाहे हिंदू थे मुसलमान थे, भगवान की चाह में तो हम धर्म मजहब में लगते हैं। सुल्तानपुर के नवाब को बड़ा दुख हुआ कि मैंने ऐसे फेथफुल नौकर पे, ऐसे भक्त आदमी पर अविश्वास किया, मैं पाप का भागी हो गया। उनको वहां से बुलाया गया कि एक बार मेरे को दर्शन दे जाएं। श्री नानक जी वापस आए, सुल्तानपुर के नवाब ने कहा कि भक्त मैंने तेरे पर शक किया, मैं अपनी अक्षमा याचना करता हूँ और आपके 760 रुपए सरकार की तरफ जाते हैं, आप अपने ले लो और नौकरी पुनः करो। तब उन्होंने कहा कि अब सच्ची सरकार की नौकरी करूंगा, इस कच्ची की नहीं करूं, और ना मुझे 760 रुपए चाहिए तेरे। 760 रुपए बहुत होते हैं उस समय के, 760 रुपए आज के 70,000 रुपए, 76,000 रुपए समझो। तो इन्होंने त्याग दिए कि मुझे नहीं चाहिए। और फिर वहां से पहली उदासी होती है जैसे कोई चीज गुम हो जाए उसकी तड़फ में और उदास होकर बिल्कुल दुखी मन से चल पड़े। अब यूं तसल्ली होने के यूं भगवान और जुलाया दानक बनकर काम करे या जचे को नहीं, उनके यकीन नहीं हुआ कि भगवान ने मुझे यह बात सही कही होगी कि मैं काशी में रहता हूं परंतु उसकी चाह और उस लोक की प्राप्ति, जैसे नानक जी ने कहा कि मुझे यही रख लो प्रभु, अब मत भेजो वापस, वहां तो बहुत बुरा हाल है।